बाबा केस, मीठे प्यारे मधुबन भूमि पर वर्षों से किस प्रकार से आना बाबा के बच्चों का होता आ रहा है, सभी बच्चे यहां आकर उसी साकार की भासना महसूस करते हैं जो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा यहां पर अपने श्रेष्ठ कर्म, योग, तपस्या, अनेक आत्माओं की विश्व सेवा इसी स्थान पर बैठकर बाबा ने की और उसी का आज भी आत्माएं रस अनुभव कर रही हैं कि जैसे अभी भी वो बाबा के साकार रूप के ही सन्मुख मिलन के ही अनुभव होते रहते हैं, कोई कमी महसूस नहीं करता है। इतना अच्छा ये यहां के वाइब्रेशंस बन गए हैं और इसी वाइब्रेशंस में हम भी बहुत छोटी आयु से यहां आते रहे। ज्ञान तो हमने बहुत छोटी आयु में ही लिया था, लगभग 9-10 साल के थे। 9-10 साल की आयु में ज्ञान मिला परिवार के साथ। माता पिता जाते थे, बच्चे तो उनके साथ ही, इतने छोटे बच्चे माता पिता के साथ ही जरूर ज्ञान लिया। हम गुजरात में रहते थे, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में ही ज्ञान मिला था। तब हम गुजरात में, अहमदाबाद में भी बहुत कम सेवा केंद्र हुआ करते थे। ये 1978 की बात होगी, 78 का समय था। तब हमारे परिवार को बाबा का ये परिचय मिला था और तब से परिवार के लगभग सभी मेंबर्स बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चल पड़े थे। फादर ने सबसे पहले ज्ञान लिया और फादर के साथ साथ ही हम बच्चे भी जाने लगे थे। मदर ने थोड़ा सा 2-2.5 साल के बाद ज्ञान को अच्छे से लिया, बाकी संपर्क में तो रहते ही थे। और इस रीति से हम लगभग 78 से ही इस ज्ञान के संपर्क में आ गए। और अहमदाबाद मधुबन से बहुत नजदीक होने के कारण मधुबन से बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन जुड़ गया। छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स भी उन्हीं दिनों में प्रारंभ हुए थे। बच्चों के प्रोग्राम्स जो आजकल भी चलते हैं हर वर्ष मई मास में, तो वो बच्चों के प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई थी लगभग 78 में। और उसी समय हम बच्चों के प्रोग्राम में आते थे। हमारा मधुबन में पहली बार बच्चों के प्रोग्राम में ही आना हुआ था। और इस प्रकार से मधुबन में आना और दादियों के बहुत समीप आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम तीन बहनें और एक भाई और मदर फादर, पूरा परिवार ही ज्ञान में चला और हम सभी भाई बहनें बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू हो गए थे। तो ज्यादा तो एक रीति कहो, बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान समझ में आता है, तो ज्यादा ज्ञान को समझना, अनुभव करना, वो बच्चों के प्रोग्राम से ही हम सीखते गए। तो भी कहेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा ही समझा सीखा। बड़े होने के बाद ही थोड़ा ठीक रीति से ज्ञान तो समझ में आया। लेकिन इस प्रकार से ही हमारा मधुबन से संपर्क बढ़ता चला गया था। और बच्चों के प्रोग्राम के अलावा भी दिवाली मनाना, कोई भी विशेष प्रोग्राम में मधुबन में जल्दी जल्दी आना जाना होता रहता था। और उन दिनों में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा आते थे, ओम शांति भवन भी नहीं बना था। और मेडिटेशन हॉल में ही हमारा अव्यक्त बाप दादा से मिलन होता रहता था। परंतु बच्चे थे तो बहुत ज्यादा कोई बाप दादा मिलन के भी अनुभव उस प्रकार से उन दिनों में तो समझ नहीं थी इतनी। लेकिन ये जरूर याद है कि जब भी बाबा के सन्मुख जाते थे, बच्चों को भी बाबा अपने हाथ से हमेशा, बाबा से तो टोली हमेशा ही सभी को ही मिलती थी बाबा के हाथ से उन दिनों में, तो बाबा के पास टोली लेने जब भी जाते थे बाबा ये जरूर कहते थे, खुश हो सदा खुश रहो, खुश हो ऐसे पूछते थे और फिर बाबा कहते थे सदा खुश रहो। तो इस प्रकार की कुछ बातें उस समय की तो याद है, बस बहुत छोटेपन की, जब मेडिटेशन हॉल में मिलते थे। परंतु उसके बाद ओम शांति भवन बना हमारे सामने ही, हमने उसमें भी जब बन रहा था तो अपने हाथों से वहां भी पत्थर वगैरह उठाने करने में सेवा की है। वो बातें याद आती, वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि इस ओम शांति भवन में भी हमने कार सेवा की है। और उसके बाद जब बाबा ओम शांति भवन में आते थे, वो थोड़ा अच्छी रीति से स्मृतियां हमारी पक्की हैं, क्योंकि तब थोड़े बड़े भी हो गए थे, कुमारी रूप में आते थे, बच्चे से थोड़ा कुमारी रूप बन गया था। और जब हम बाबा से मिलने आए थे तो बाबा की बातों को ही लेते हुए मैं अपने अनुभव की बातें सुनाऊंगी कि अव्यक्त बाप दादा से जब मिलन होता था, रात भर बाबा बैठते थे ओम शांति भवन में, हम भी पूरी रात बैठते थे। किसी का टर्न मिलने का होता था, किसी का नहीं होता था, ऐसे ग्रुप ग्रुप में मिलते थे बाबा से उन दिनों में। लेकिन हमारी मुलाकात पर्सनल बाबा से है या नहीं है, लेकिन हम ओम शांति भवन से बाहर जाते नहीं थे, रात को सोने जाते नहीं थे। रात भर बाबा बैठते थे तो हम भी चाहे थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाते थे ओम शांति भवन में पीछे पीछे, लेकिन बैठते जरूर थे, कभी छोड़ते नहीं थे ये मौका। और इस प्रकार से बाबा से बहुत अंदर में प्यार, नजदीकी का अनुभव होता रहता था। एक बार की बात है, मुझे याद है, बहुत बड़े तो नहीं हो गए थे, बचपना भी था अभी उस समय, तो बाबा का रात भर मिलन हुआ, सबसे पर्सनल मुलाकात होती थी। और सुबह का लगभग टाइम हो गया था, 6 बज गए होंगे, 6:30 हो रहे थे, बाबा अभी भी नहीं गए थे। और वो दिन था जिस दिन बाबा ने पूरे मधुबन निवासियों को अपने हाथ से टोली देने के लिए लास्ट में फाइनल किया था। तो सभी मधुबन निवासी आते जा रहे थे, टोली लेते जा रहे थे, और मैं बिल्कुल पीछे बैठी थी। परंतु मुझे बड़े खींच हो रही थी, मुझे लग रहा था अंदर संकल्प बड़ा पावरफुल लग रहा था, मुझे भी जाना है स्टेज पे, मुझे भी बाबा से टोली लेनी आज। अब मैं तो मधुबन निवासी तो हूं नहीं, तो मेरा तो आज चांस नहीं है बाबा के नजदीक जाने का, सिर्फ मधुबन निवासियों को मिल रही है टोली। लेकिन अंदर पता नहीं क्यों एकदम इच्छा बहुत जागृत हो रही थी, मुझे भी जाना है, जाना है। और आखिर में जब बिल्कुल पूरा हो रहा था मधुबन निवासियों की, सभी की बारी पूरी हो गई थी, तो भी मैं खींची चली आई, जैसे वहां से पीछे से ओम शांति भवन के पीछे से बैठे हुए मैं आगे स्टेज के पीछे आ गई, अपने आप ही जैसे कुछ खींच हो रही थी और इच्छा जागृत हो रही थी, मुझे जाना है बस। और पीछे गई तो वहां भी कुछ भाई जो थे साउंड रूम में बैठे थे, उन्होंने भी कहा आप जाओ, किसी ने रोका नहीं, ये नहीं कहा कि आज आपको थोड़ी बुलाया है, आप यहां क्यों आए। मधुबन निवासियों को आज तो बाबा टोली दे रहे हैं, तो किसी ने मना नहीं किया। एक जैसे बाबा खुद ही मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी के थ्रू करवाते जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता जा रहा था। और उन्होंने भी मुझे भेज दिया स्टेज पे, और तब तक बिल्कुल लास्ट हो गया था, दादियां बाबा के सामने बैठ गई थी विदाई देने के लिए। जब बाबा विदाई लेते हैं तो दादियां सामने बैठ जाती थी नीचे, तो दादियां भी बैठ चुकी थी और बाबा को विदाई देने का टाइम आ गया था। और मैं जैसे स्टेज के पीछे से एंटर हुई और दादियों ने भी मुझे देख लिया कि ये आई हैं, तो दादियों ने भी मुझे बुलाया। उन्होंने भी, किसी ने मैंने ऐसा नहीं कि मना किया हो, अभी टोली वोली समेट के रख दी है और बाबा जाने वाले हैं, तो भी दादियों ने भी मुझे बुला करके भी कहा आ जाओ और टोली ले लो बाबा से। और बाबा के हाथ से उसी समय फिर डिब्बा खोला और बाबा के हाथ से मुझे टोली दिलवाई लास्ट, और फिर बाबा विदाई ले रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गई दादियों के पीछे स्टेज पे ही विदाई देने के समय। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने मुझे खींचा, बाबा के पास मेरा संकल्प पहुंचा कि मुझे भी टोली लेनी है आज बाबा से, जबकि मधुबन निवासियों का टर्न था। लेकिन बाबा जैसे बच्चों की आश पूरी करने के लिए हमेशा, ये मधुबन भूमि ऐसी है जो संकल्प करो पूरा होता है, और उसका एक बाबा के पास कैसे पहुंच जाता है और बाबा हमारी आश पूरी करते हैं, ऐसा महसूस हुआ। और इतना अच्छा उस समय, खुशी में कहो, बाबा के प्रति इतना भाव जागृत हो रहा था और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो इस प्रकार से ये एक ओम शांति भवन में अनुभव हुआ था। इसके बाद हम कुमारियों के ग्रुप में आते रहते थे, बाबा मिलन में एक बार कुमारियों के ग्रुप में आए थे, कुमारियों का ही पूरा बुलाया था झुंड कि सभी कुमारियां ही बाबा से मिलने आएगी। अधर कुमारों का भी ग्रुप था उस समय और कुमारियों का, दो ग्रुप बुलाए थे एक साथ। तो उस समय भी हम बाबा से मिले, तो अधर कुमारों का ग्रुप जब था तो फादर भी आए थे और हम दो कुमारियां, हम दो सिस्टर्स तो आई थी, बाकी दो भाई बहन छोटे थे तो वो नहीं आए थे। तो तब हम बैठे थे सामने, और जब अधर कुमारों का टर्न चल रहा था तो बाबा मिले फादर से, और साथ में जो टीचर बहन होती थी हमेशा परिचय कराती थी बाबा से कि ये कौन है क्या है। तो हमारी टीचर, हम उस समय भावनगर से आए थे, तो गीता दीदी जो अभी शांतिवन में है वे भावनगर में थे उन दिनों में, क्योंकि अहमदाबाद से हम लोग फिर भावनगर शिफ्ट हुए थे, और भावनगर में हम तब ज्ञान में चलते थे, मैंने वहां के सेंटर पर जाते थे उस प्रकार। तो तब गीता दीदी ने फादर का परिचय बाबा को कराया कि भी इनकी दो कन्याएं भी आई हैं, बेटियां, और वे भी अभी बाबा से मिल के गई है। तो क्योंकि कुमारियों का ग्रुप पहले मिल चुका था, अधर कुमार बाद में मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कौन है वो कुमारियां, बुलाओ उनको। बाबा ने बोला कि बुलाओ उनको, और हम सामने बैठे थे, हम फट से कूद के चढ़ गए स्टेज पे, छोटा सा तो है वहां स्टेज ओम शांति भवन का, तो सामने से कूद के हम चढ़ गए, बाबा के पास पहुंच गए, बाबा को बताया कि ये कुमारियां हैं इनकी। तो बाबा ने पूछा क्या करते हो, क्या दोनों से, मैंने कहा पढ़ाई चल रही है, पूरा पढ़ाई पूरी की, तब अभी 12th पूरा किया था मैंने, तो आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। बाबा के सामने भी मैंने कहा पढ़ाई पूरी कर ली, ऐसे बोला। बाबा ने कहा फिर आगे क्या करना है, सेवा करेगी, मैंने कहा हां जी। बाबा ने कहा कि उड़ता पंछी हो ना, पिंजरे की मैना तो नहीं हो ना। मैंने कहा नहीं। ऐसे करके बाबा ने वरदान दिया। ये बाबा के बोल निकले और बाबा ने कहा उड़ता पंछी हो, पिंजरे की मैना नहीं हो ना। मैंने कहा नहीं, और बाबा ने वही एक प्रकार से मेरे लिए वरदान का रूप बना दिया। वही मैंने अनुभव किया कि उसके बाद पढ़ाई की ओर मेरा ध्यान ही नहीं था, रुचि नहीं थी, और संकल्प मेरा बस था कि मुझे बाबा की सेवा में लगना है। अभी उस समय एकदम फाइनल नहीं हुआ था कहीं सेवा केंद्र पर रहने का, लेकिन उन दिनों में समय आया, 1985 का टाइम था, तब पदयात्रा का समय आया। पदयात्रा निकली थी, आप सबको मालूम होगा जो पुराने होंगे, तो पदयात्रा 11 जगह से निकली थी और दिल्ली पहुंच रही थी सब जगह। उनमें से माउंट आबू से दिल्ली की जो पदयात्रा थी, यहां से मधुबन से जो दिल्ली की पदयात्रा, उसमें हमने भाग लिया था, उसमें हमारा चांस रहा था। तो माउंट आबू से दिल्ली की पदयात्रा में जाने का अचानक से, वो भी एक कैसे बना, थोड़ी सी बात अगर मैं बताना चाहूं तो, गुजरात से भी पदयात्रा गई थी दिल्ली की ओर, लेकिन गुजरात की पदयात्रा में बहनों का उन्होंने नहीं रखा था कि भाई ही जाएंगे, उन्होंने किसी बहनों का प्रोग्राम नहीं बनाया था गुजरात वालों ने। और जब गुजरात से पदयात्रा प्रारंभ हो रही थी, सोमनाथ से दिल्ली जा रही थी, तो उस समय जब उसका शुभारंभ होना था, दादी ने हर एक पदयात्रा का शुभारंभ करने, दादी हर जगह गई थी, तो सोमनाथ भी आए थे प्रकाशमणि दादी जी। दादी ने उस पदयात्रा वालों से फाइनल शुभारंभ करने से पहले जब देखा कौन कौन है, तो दादी ने देखा इसमें बहने नहीं है। तो दादी ने कहा कि क्यों, बहनों का क्यों नहीं रखा, हर पदयात्रा में बहने थी, तो इस पदयात्रा में बहनों को क्यों नहीं रखा। तो गुजरात वालों ने नहीं सोचा होगा पहले उस बात का कि बहने कहां चल पाएगी, ऐसा सोच के उन्होंने नहीं रखा। लेकिन दादी ने खुद वहां पर कहा नहीं, बहने गुजरात की भी जा सकती है, क्यों नहीं चल सकती। तो अभी मैं बताती हूं, दादी ने कहा कि जिन बहनों को, गुजरात की बहनों को पदयात्रा में जाने की इच्छा हो, वो माउंट आबू की पदयात्रा इसके बाद निकलने वाली है, उसमें वे अपना नाम लिखवा सकते हैं। दादी ने वहां सभा में अनाउंस कर दिया था। तो सोमनाथ की पदयात्रा में बहने नहीं थी और माउंट आबू की पदयात्रा में गुजरात की बहनों को दादी ने निमंत्रण दे दिया। और मेरे को इतनी खुशी हुई, मुझे बहुत इच्छा थी, लेकिन वहां तो मना हो गया था, और मेरे को इच्छा थी और मैंने फटाफट अपना नाम भेजने की बात कर ली। गीता दीदी थे तब वहां पर, तो गीता दीदी ने, दीदी को मैंने बताया। लेकिन उस समय मैं पूरे पिछले, उससे पिछले एक साल में खूब बीमार रही थी, और बीमारी के बाद मैंने अचानक से इस पदयात्रा में जाने का संकल्प किया, तो सब कैसे छुट्टी दे मुझे, ऐसे कैसे तुम पदयात्रा में कैसे जा सकती हो, अभी तो बीमारी से मुश्किल से उठी हो। लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है। तो गीता दीदी ने एक कारण सामने रखा कि डॉक्टर से सारा उसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए, डॉक्टर अगर कहते हैं, क्योंकि उस समय ये भी लॉ निकला, माना उन्होंने बनाया था पदयात्रा वालों ने, कि उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के ही आना है, वही जाएंगे पदयात्रा में। तो दीदी, गीता दीदी ने भी यही कहा कि आप डॉक्टर से पहले फाइनल करा लो, अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे तभी तुम जा सकती हो। उनको लगा कि अभी बीमारी से उठी है, डॉक्टर तो ना कर देंगे। और डॉक्टर के पास मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट, माना सारा चेकअप करा के, अंदर से तो सब ठीक थी, बीमारी उस समय ठीक हो चुका था। डॉक्टर ने उस समय यही बोला कि इसको जिसमें खुशी है वो करने दो, जिस कार्य को करने में इसको खुशी है वो करने दो, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, इससे वो और ठीक हो जाएगी। तो मुझे उससे एक साल पहले टीबी की तकलीफ थी और टीबी से मैं रिकवर होकर के ही अभी ठीक हुई थी, और उसके बाद ही फिर मेरे को डॉक्टर ने ये बोल दिया। तो ये भी समझो कि बाबा करवाने वाला करण करावन हार, में तो हमेशा यही बात कहती आई हूं और मन में संकल्प रखती हूं, वो ही कराता है सब कुछ। हमने तो केवल एक संकल्प रखना है और बाबा करण करावन हार सब पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, ये जीवन में हमेशा ही अनुभव किया है। तो इस प्रकार से संकल्प था कि मुझे जाना है पदयात्रा में, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बीमारी से जो ठीक हुई है, अभी इतना कमजोरी होगी उसको, उसको डॉक्टर हाँ कैसे कर सकते हैं। लेकिन करण करावन हार ने डॉक्टर से भी हाँ करवा दिया, और अब तो मुझे कोई मना कर ही नहीं सकता था, टीचर्स बहने भी अब कैसे ना कर सकती थी, तो परमिशन मिल गई और पदयात्रा में जाना फाइनल हुआ। और इस प्रकार से माउंट आबू से दिल्ली की पदयात्रा में हम यहां से गए थे, और इस पदयात्रा में ही मधुबन के निवासियों से काफी नजदीक आते गए, दादियों से नजदीक आते गए। रतन मोहिनी दादी हमारी पदयात्रा को पूरा संभालते थे, और इस प्रकार से यहां से माउंट आबू से गए तो बड़ी दादी, रतन मोहिनी दादी, सब दादियों ने ही हमारी खुद तिलक लगा के, बैज पहना के, कलश सिर पर दे करके, झंडा दे करके विदाई दी थी। तो उस समय भी दादियों को भी हैरानी थी कि ये छोटी बच्चियां हैं, क्योंकि उस समय तो 19-20 साल की भी, मैंने 18-19 साल की एज थी, तो बहुत एज भी नहीं थी। दादियों को लगा इतनी छोटी बच्चियां चलेगी क्या, लेकिन हिम्मत रखी थी दादियों ने भी, कहा ठीक है जाओ। और इस रीति से उस पदयात्रा में हमारा जाने का बना। 2 महीने की वो पदयात्रा थी और 2 महीने हम लगातार चले थे। तो इस प्रकार से बाबा ने जो एक वरदान दिया था कि उड़ता पंछी बनो, वो लगा कि जैसे बाबा मुझे आगे उड़ाना चाहते हैं। उस पदयात्रा के बाद दिल्ली में पांव रखा था पहली बार, और उस कदम ने मुझे शायद कह लो और ज्यादा दिल्ली की ओर खींच लिया। पदयात्रा पूरे होने के बाद ही हम मधुबन में सेवा में रुके थे। मधुबन में हम बार बार सेवा में आते रहते थे, बीच बीच में कभी 1 महीना कभी 2 महीना छुट्टियों में सेवा करते रहते थे। तो मधुबन में हर प्रकार की सेवाओं में हम रहे हैं। तो उन दिनों में भी पदयात्रा के तुरंत बाद हम सेवा में आए थे, और यहां सेवा में 1-1.5 महीना हो गया था लगभग। उसी समय रहते रहते अंदर में संकल्प पक्का हुआ कि अब हमें कहीं सेवा केंद्र में ही जाना है रहने के लिए, सेवा करने के लिए। अब हम वापस घर नहीं जाकर के सीधा सेंटर जाएंगे, ऐसे अंदर में संकल्प जैसे जागृत होने लगा। 86 के आसपास की बात होगी, 86-87, और उस समय 87 का टाइम था, और उस समय जो है पदयात्रा 85 के एंड में थी, और एक साल बीता था, और 87 में हम सेवा में आए थे। और तब एकदम संकल्प उठा कि सेवाओं में ही जाना है। हमने उसी समय अपना संकल्प हमारी टीचर को बताया, गीता दीदी को बताया कि हमें जाना है सेवा केंद्र में ही अब जाने के लिए हम इच्छा रख रहे हैं। तो लेकिन हमने एक संकल्प और बताया उनको कि हम गुजरात से बाहर जाएंगे, थे गुजरात के, लेकिन अंदर पता नहीं क्या बेहद का संकल्प चल रहा था कि हमें कहीं बेहद में जाना है। गुजरात माना वहीं के वहीं नहीं रहना है, हम वहीं के हैं, हम वहां हद में नहीं रहेंगे। तो उस संकल्प को हमने बताया दीदी को, तो गीता दीदी हमें दादी के पास ले गए, प्रकाशमणि दादी के पास, कि दादी ऐसे ऐसे इस कुमारी का, मैं और मेरे साथ एक और कुमारी थी थोड़े समय पहले यहां पर, उसने भी यहां पर सुनाया था, भावना बेन। तो उन्होंने, मैं और भावना बेन दोनों, दो कुमारियां थी, हमने दोनों ने एक साथ ये संकल्प किया और दोनों को दादी के पास ले गई गीता दीदी। और उन्होंने कहा कि ये दोनों कुमारियां सेंटर पर रहना चाहती है लेकिन कह रही है गुजरात से बाहर जाएंगे, हम बेहद में जाना चाहते हैं। तो दादी ने कहा कि अभी तो अचानक से मैं, मुझे जब संकल्प आएगा या पता चलेगा कि कहां जरूरत है वहां मैं भेज दूंगी, पहले पता तो कर लूं, तब तक आप अपने सेंटर पर रहो। हमने कहा नहीं, और हमने बस ऐसे ही अपना संकल्प सुनाया कि नहीं, तब तक घर में चले जाएंगे या तो फिर, और सेंटर पर नहीं लेकिन हम फिर बाद में जब भी आप कहेंगे जहां भेजेंगे वहां चले जाएंगे। तो जब दादी ने ये सुना कि नहीं अभी तो ये सीधा ही कहीं जाना चाहती है, नहीं तो घर जाएगी ये, तो अचानक दादी के मन में संकल्प आया, ये भी करण करावन हार बाबा का काम है। बाबा ने संकल्प दिया दादी को, एक ऐसे ही लगा मुझे तो, कि दादी ने कहा आप गुलजार दादी से बात करो, दिल्ली में जरूरत है। उसी समय वहीं के वहीं दादी ने बोला और बाहर निकले हैं दादी के कमरे से, और बाहर गुलजार दादी जी मिल गए आंगन में ही। दादी जी से बात की कि हमें प्रकाशमणि दादी ने कहा है कि ऐसे दिल्ली में जरूरत है, तो आप माना हम दिल्ली में आने की बात पूछ, माना कहा गीता दीदी ने वहां हमको दादी जी से मिला दिया, गुलजार दादी से। खड़े खड़े दादी ने दो तीन बातें ही पूछी, ज्ञान में कब से चल रहे हो, कौन कौन चल रहा है, पढ़ाई क्या की है, ऐसी दो तीन इंटरव्यू हुआ हमारा खड़े खड़े और वही बातचीत पूछ करके दादी ने कहा ठीक है आप आ जाओ दिल्ली में, दोनों कन्याएं। और दोनों कन्याओं को हमको दादी ने कहा कि आप भले दिल्ली में आने का बना लो, फलानी डेट पे मैं भी जा रही हूं, दादी ने अपनी डेट बता दी, तो आप भी उस समय में वहां दिल्ली में आने का बना लो। तो कुछ ही दिनों का गैप था, अभी हफ्ता भी मुश्किल था बीच में, और हम बस थोड़ा सा घर में सामान लेने के लिए गए कि घर जाके हम थोड़ा अपना सीधा सेंटर पर जाना है तो सेंटर के लायक सामान तो चाहिए, इतना ही लेने के लिए तीन चार दिन के लिए घर गए। घर वालों को पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था, हमने यहां डिसीजन ले लिया, दादियों से बात कर लिए सब कुछ, और घर में जाके बताया कि हम दिल्ली जाएंगे सेवा केंद्र में। घर वालों के वैसे तो परमिशन मिलना मुश्किल नहीं था, इसीलिए हमने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि दोनों के परिवार वाले ज्ञान में चलते ही थे, लेकिन हैरानी तो होगी ना उनको भी, हैरान तो बहुत हुए वो, लेकिन उन्होंने तैयारी करवा दी हमारी और हम दिल्ली में पहुंच गए 1987 में फरवरी में। तब हम दिल्ली में सेवा केंद्र में, तो उसी समय गुलजार दादी के पास पहले हम पांडव भवन में गए, गुलजार दादी पांडव भवन, दिल्ली पांडव भवन जो है, दिल्ली के पांडव भवन में दादी रहते थे ना, तो वहां पर हम पहुंचे जाते ही, और पहले ही दिन दादी से जैसे स्नान वगैरह करके दादी के पास मिलने गए, दादी पहुंच गए थे हमारे पहुंचने तक पांडव यहां से मधुबन से, और हम अपने गुजरात से वहां पहुंच गए, तो दादी से मिले। दादी ने मेरे को पहले ही कहा कि आप अभी अपना सामान ज्यादा नहीं खोलना, क्योंकि कल सुबह आपको शक्तिनगर से लेने के लिए आ जाएंगे, शक्तिनगर से आपको भाई लेने आएंगे, आपको शक्तिनगर में रहना है, जाना है। उसी समय पहले ही दिन दादी ने मेरे को बता दिया था, और बस दूसरे ही दिन पांडव भवन, दिल्ली के पांडव भवन से और शक्तिनगर में मुझे लेने के लिए आ गए थे भाई, और वहां उनके साथ में शक्तिनगर पहुंच गई थी। जगदीश भाई सब थे तब, चक्रधारी दीदी, उनकी पालना में रहने का पलने का सौभाग्य मिला। उस समय मैं तो जानती तक भी नहीं थी उनको, अच्छे से क्लोजली नहीं जानते थे, क्योंकि अभी तो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। ज्ञान में चलते थे लेकिन ऐसे बड़ों से मिलना करना इतना नजदीक से या ऐसी कोई बात नहीं, नाम सुना था खाली, जगदीश भाई हैं बड़े भाई, चक्रधारी दीदी हैं, नाम ही सुना था खाली, इतना बिल्कुल हमें कोई उनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, पहचान ही नहीं थी। लेकिन ये भी एक सौभाग्य बना जो उनके बिल्कुल संग रहने का हमें चांस मिला। शक्तिनगर में ही जाकर के हम रहे और उन्हीं के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखते गए। लेकिन शुरू शुरू में जब बाबा माना जाकर जा रहे थे जब, तो उस समय जाने के समय भी जैसे अवत बाप दादा से तो मुलाकात होती रहती थी उन दिनों में, तो बाबा से उस समय हम मिले थे जाने से पहले, तो उस समय की एक बात याद आ रही है कि बाबा ने उस समय पर्सनल मुलाकात होती थी, बाबा के पास गए मिलने, तो बाबा ने कहा कि अकेली नहीं हो तुम, बाप सदा साथ हैं, ऐसे बाबा ने बोला। क्योंकि मुझे डर सा लग रहा था थोड़ा, संकल्प तो कर लिया कि जाना है दिल्ली और इतना दूर, लेकिन अंदर में जैसे संकल्प थोड़ा डर वाला था, थोड़ा अकेलापन लगता था कि क्या होगा, तो बाबा ने उस समय जैसे संकल्प हमारा परख लिया और उस समय बाबा ने ये शब्द बोले थे, हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप, जहां हिम्मत है वहां सब प्राप्ति है, और अकेली नहीं हो, बाप सदा साथ है, ऐसे बाबा ने वरदान दिया, शब्द बोले। और वो ही मेरे अंदर में हमेशा के लिए गूंजते रहते हैं शब्द, कि कहीं पर भी अब माना उसके बाद मैंने हिम्मत को खत्म नहीं होने दिया, हिम्मत को कम नहीं होने दिया। दिल्ली जैसे अनजान स्थान पर जाकर के और बिल्कुल अकेलेपन का, ऐसा कि वहां कोई न जान न पहचान, भाषा भी हिंदी अच्छे तरीके से बोलनी नहीं आती थी, तब तो गुजराती थे तो गुजराती टोन गुजराती बोलना आता था, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे तो थोड़ा सा जिससे भी बात करो वो भी थोड़ा सा हंसी मजाक सा रूप का रूप हो जाता था। छोटी छोटी अभी तो कन्या के रूप में अभी गए थे सेंटर पे, तो थोड़ा इस प्रकार से ही माना इतना समझ नहीं होती थी कि क्या करना होता है कैसे, तो डर सा लगता था, अकेलापन सा लगता था। लेकिन बाबा की ये बात गूंजती रहती थी फिर, कि बाबा कह रहे हैं अकेली नहीं हो, बाप सदा साथ हैं, अकेली नहीं हो, बाप सदा साथ है, उस बात ने अंदर और हिम्मत को बना के रखने में मदद की और हिम्मत और मेरी बढ़ती चली गई, माना बनती चली गई, और उसी प्रकार से वहां धीरे 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 करके सेट हुए। शुरू में मुश्किल तो लगा सेट होने में, थोड़ा एक अनजान स्थान पर कदम तो उठा लिया था, बड़ा हिम्मत करके संकल्प कर लिया हमें बेहद में जाना है, गुजरात में नहीं रहना है, लेकिन तब कुछ सोचा थोड़ी था कि ऐसा भी कुछ हो मौका, माना ऐसा कुछ बनेगी कि बिल्कुल अनजान स्थान पर जाना पड़ेगा और कैसे रहना होगा, समझ कुछ नहीं थी। लेकिन बाबा साथ थे, बाबा के साथ ने सब कुछ सरल करा दिया, सहज करा दिया। इसके साथ साथ एक बात मुझे बाप दादा के वरदान की और भी याद आ रही है, जो बीच की बातें हैं, मैं सेवा केंद्र में नहीं गई थी उससे पहले की एक बात, कि मधुबन हम सेवा में आया करते थे और मधुबन में जैसे मैंने बताया कि कभी महीना महीना सेवा में रहते थे, तो मधुबन में जैसे किचन में सेवा होती थी, रोटी बनाना, नाश्ता बनवाने के टाइम हम हमेशा होते थे। दिन में हम कभी म्यूजियम में सेवा करने चले जाते थे, जो म्यूजियम है नक्की लेक के पास। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते थे। यहां भी हम पांडव भवन में गाइड सेवा करते थे। नए कोई भी विजिटर्स आते थे तो उनको शांति स्तंभ, बाबा का कमरा और ये सब दिखाना, कुटिया वगैरह, तो नए विजिटर्स को सारा दिखाना होता है, वो गाइड सेवा हम करते थे। तो इस प्रकार से उस समय में मेरे को याद आ रहा है कि जब भंडारी की भी सेवा थी, लेकिन छोटे थे, समझ भी पूरी नहीं थी, सेवा क्या होती है बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो हम क्या करते थे कि भंडारी की सेवा तो मुरली के टाइम में होती है, सवेरे सवेरे का नाश्ता वगैरह बनाना करना में, तो मैं तो मुरली सुनने चली जाती थी। मैं सेवा नहीं करती थी तब। मैं कहती थी मुरली का टाइम हो गया ना, तो मेरे को तो मुरली सुनने जाना है। और मैं सेवा छोड़ के, जबकि सेवाधारियों को मुरली वहीं सुना दी जाती थी या तो माइक में सुनते थे और वहां नहीं जाना होता था ओम शांति भवन में, लेकिन मैं चली जाती थी। तो ऐसे लगभग 15-20 दिन का जो भी सेवा का काम माना दिन थे, तो मैंने सवेरे के नाश्ते के टाइम की सेवा नहीं की, बाकी के टाइम में चली जाती थी, फिर दिन की रोटी बनानी है या रात का टाइम में, लेकिन सुबह की मुरली के टाइम में छोड़ देती थी। तो उसके बाद जब सेवाधारी लास्ट में जब जाने वाले होते हैं तो बाबा से मिलते हैं, ऐसे करते थे ना, तो सेवाधारी माना हमारा भी जब जाने का दिन आया, बाबा से मिलन हुआ, हमें पर्सनल मिलाया गया सामने, तो बाबा के पास गए। बाबा ने कहा कि सेवा की, जमा किया, बाबा प्रश्न पूछ रहे थे, सेवा की, जमा किया, सेवा करने से जमा होता है, ऐसे शब्द बाबा ने बोले, सेवा करने से जमा होता है। तो हमने उस समय हाँ हाँ कर दिया, उस समय तो समझ नहीं थी जो भी था। ये सब बातें थोड़ा बाद में समझ आई कि वो जो बाबा ने मुझे उस समय बोला था, वरदान कहो या बाबा शिक्षा भी दे देते थे ना जो भी सामने आए, तो मैंने सेवा छोड़ करके बीच में मुरली सुनने जाना है, ये करना है, सेवा नहीं करती थी, मना छोड़ देती थी बीच में, जब हमारी मर्जी से सेवा करना मना, जब जैसी इच्छा हुई वैसी सेवा की। तो बाबा ने फिर ये शब्द बोले थे और आज मुझे माना बाद में ध्यान आता है कि ये बाबा ने इसलिए बोला था कि मेरे अंदर में वो गलती थी कि मैंने सेवा छोड़ करके अपना मुरली सुनने का बनाया था प्रोग्राम। तो बाबा पाठ भी पढ़ा देते हैं बच्चों को, सन्मुख बाबा से मिलने गए तो बाबा ने पाठ पढ़ाया, सेवा करने से जमा होता है, सेवा के समय में दूसरी कोई बात नहीं सोचनी होती, फिर सेवा माना सेवा, सेवा वालों को त्याग करना होता है, तभी त्याग पहला नंबर बोला जाता है, त्याग, तपस्या, फिर सेवा, सेवा शब्द को हमेशा आखिर में बोला जाता है। पहला चाहिए सेवा करने वालों को त्याग, और साथ में चाहिए तपस्या। सेवा खाली करनी नहीं है, सेवा के साथ हमारे अंदर में बाबा के प्रति बुद्धि योग होना, बाबा के प्रति प्रीत होना, ये है तपस्या। योग युक्त होकर सेवा करनी है ना, सेवा और योग को अलग नहीं कर सकते ना, सेवा और तपस्या को हम अलग नहीं कर सकते, त्याग फिर तपस्या फिर है सेवा। तो सेवा होगी पहले तपस्या करने के साथ, करने के बाद, इसलिए ये पाठ उस बात से मैंने समझा जो बाबा ने मेरे लिए शब्द बोले थे कि सेवा करने से ही जमा होता है। जमा करना चाहूं मैं, अपना भाग्य जमा करना चाहूं, और त्याग करके मुझे सेवा करनी पड़े तो वो सेवा नहीं की, अपनी मर्जी से सेवा की, वहां क्या भाग्य जमा होगा मेरा, वो सेवा खाली नाम की सेवा हो जाएगी, निमित्त मात्र सेवा हो जाएगी। तो वो सेवा करने का जो सही विधि है वो जैसे कि उस बात के आधार पर मुझे समझ में आई थी। और इस रीति से बाबा के जो जब भी मिले हैं और वरदान मिला है, उन्होंने बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन लाना सिखाया, बदलाव लाना सिखाया। नहीं तो पहले अपने तरीके से सेवा करना, मना बस मस्त अपने तरीके से जैसे मर्जी करना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि उड़ता पंछी बनना है, पिंजरे की मैना नहीं बनना है। तो जैसे बाबा ने जो शब्द बोले थे तो संकल्प ही उठा कि बस बेहद की सेवा में जाना है, बाहर कहीं जाएंगे और बेहद की सेवा में जाकर के ही अपना पार्ट बजाने का बाबा ने करवाया, कहो ड्रामा ने करवाया। लेकिन बाबा के उस वरदान ने मुझे उस रास्ते पर चलाया। उसी तरीके के संकल्प उठना, उसी तरीके का प्लान बनना, और कहां गुजरात से हम दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में सेट हो गए। तो इस प्रकार से बाबा ने सेवाओं में मुझे भेजा और इस प्रकार से बाबा के वरदान मुझे, इसलिए जो सन्मुख मिलन हुआ है जब जब बाबा से और वरदान पाए हैं, वो वरदान बार बार बुद्धि में घूमते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। और उसी के आधार पर जैसे मुझे बाबा चला रहा है ऐसे महसूस होता है। जो भी करण करावनहार वो हैं, वो हमारे अंदर की जहां मेरा पार्ट है, जहां मेरी जरूरत है, वहां बाबा मुझे फिट करता है ऐसा लगता है। और इस रीति से मैं भी अंदर में संकल्प हमेशा बाबा के आगे रखती ही रहती हूं। आज भी हमेशा अनुभव करती रहती हूं कि बाबा आप जो कहोगे वो करेंगे, बाबा आप कराओगे वो करेंगे। पहले नहीं था, थोड़ा बीच में मना, ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो रहा है, लेकिन अभी मैं अभी की बात अपनी सुनाऊं, कुछ समय से, कुछ वर्षों से मेरे अंदर में ये पाठ जरूर पक्का हो गया है, होता जा रहा है कि मैं हमेशा बाबा को ही अपना जीवन जैसे बस उनकी गोदी में डाल दिया है और अब तू जैसे चलाएगा, तू करण करावनहार है। और ऐसा लगता है कि सचमुच में बाबा ही चला रहा है, बाबा ही करा रहा है। और उसमें फिर मैं पिछली पूरी हिस्ट्री अपनी याद करती हूं कि मैं ऐसे ऐसे कैसे बाबा के वरदानों को लेकर के कहां से कहां बाबा ने मुझे कैसे कैसे सेवाएं सिखाई, करवाई, बिठाया, सेट किया। तो तब भी मुझे लगता है कि वो तो शुरू से ही करण करावनहार बन करके मेरा कार्य कराता रहा है, पार्ट बजवाता रहा है। और आज भी मैं अनुभव कर रही हूं कि बाबा ही करा रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा के प्रति दिल से बार बार शुक्रिया निकलता रहता है। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति।